जो टॉपिक है स्पार्क रिसर्च प्लानिंग प्रोग्रेस रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स, ये हमारे सुशील भाई कराएंगे। सुशील भाई साइंटिस्ट जी, HOD इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलीड साइंस लैब DRDO दिल्ली। वो ज्ञान में 15 साल से है, स्पार्क कोर ग्रुप मेंबर है और उनके साथ एकता बहन भी जो दिल्ली लोकल चैप्टर से फैकल्टी है, वो स्पार्क में बहुत उनके योगदान है, वो 21 साल से ज्ञान में है। हम इन दोनों को वेलकम करेंगे, अभी इनसे हम सुनेंगे। ओम एक मिनट साइलेंस से शुरू करेंगे।
शांति। ये सेशन है, दिस इज स्पार्क विंग यानी स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर। हम जो कुछ भी राज्यों की प्रैक्टिस करते हैं और उससे हमें जो खजाने प्राप्त हुए या हमें जो शांति की महसूसता होती है, जो हम कहते हैं कि वातावरण को भी उससे शांति मिलती है, इन सब चीजों को हम प्रूफ कैसे करें? हमने तो उसको एक्सपीरियंस किया, लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया, लेकिन साइंस को एक्सपीरियंस के साथ क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। तो उसके लिए ये अब तक स्पार्क की ओर से जो रिसर्च प्रोग्राम कंडक्ट हुए और जिसमें साइंटिफिक रूप में ये चीजें देखी गई कि कैसे हमारे अंदर भी चेंज आते हैं, हमारे ब्रेन नेटवर्क्स में क्या चेंजेस आते हैं जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो अब तक की जितनी भी स्टडीज कंडक्ट हुई हैं, तो मोस्टली 9 स्टडीज हैं जो प्रॉपर वे में कंडक्ट हुई और जिनकी एनालिसिस भी आ गई हैं, तो वो हम लोग आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने हम रख रहे हैं, एक दिल्ली में हॉस्पिटल है, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, जहां पे नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट वर्ल्ड से भी स्पाइन इंजरी के पेशेंट्स आते हैं। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर स्पाइन इंजरी को ट्रीट किया जाता है। आज से 6 वर्ष पूर्व यहां पर सेवाएं शुरू हुई थी। आदरणीय सरोज दीदी जो स्पार्क विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके नेतृत्व में वहां सेवाएं शुरू हुई थी। उसके बाद तब तक हम लोग स्पार्क विंग से जुड़े हुए नहीं थे उसके बाद में जब हम स्पार्क विंग से जुड़े तो इन सेवाओं के लिए सोचा कि इसको हम एक रिसर्च का भी रूप देते हैं। तो वहाँ के पेशेंट्स जो हैं वो खुद ही डॉक्टर के पास जाके बोलते थे कि हमको ये मेडिटेशन से बहुत अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर जो हैं वहाँ के मेडिकल डायरेक्टर वो खुद बहुत इंटरेस्टेड हुए और उन्होंने कहा इसको चलो रिसर्च में कन्वर्ट करते हैं। और सारा रिसर्च प्रोजेक्ट एवरीथिंग उन्होंने ही प्लान किया, उन्हीं की पूरी टीम ने इसमें हमें सपोर्ट दिया। और लास्ट ईयर ये रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और 1.5 ईयर तक ये चला। इसमें हमारे 50 पेशेंट्स पर इस रिसर्च को किया गया। 50 पेशेंट जिनको हमने राजयोग मेडिटेशन में जो इंटरेस्टेड थे और उन्होंने किया, और 50 पेशेंट्स ऐसे जो जिनको सब कुछ सेम थेरेपी मिल रही थी एक्सेप्ट दी राजयोग मेडिटेशन, तो उनके डिफरेंसेस को ऑब्जर्व किया। और पेशेंट्स के साथ उनके जो केयर टेकर थे वो भी इस स्टडी में इन्वॉल्व थे, तो उनके जो बेसिक साइकोलॉजिकल और फंक्शनल पैरामीटर्स को हमने इसमें लिया था, तो उनके साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स थे स्ट्रेस, हॉस्पिटल एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो स्ट्रेस, हॉस्पिटल एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन में हमने देखा कि उनके अंदर जो स्टैट्स है वो कहता है कि सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड है कंपैरेटिवली टू कंट्रोल ग्रुप, और जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव्ड है। सो ये ग्राफ आपके सामने है, आप इसमें देख सकते हैं कि जहां पर जिन पेशेंट्स ने इसको किया उनका स्ट्रेस 59.1% डिक्रीज हुआ है, और जो जिन्होंने नहीं किया उनको सब कुछ सेम थेरेपी मिल रही है और उनका जो स्ट्रेस है वो खाली 4.5% ही रिड्यूस्ड है। फिर आप यदि एंग्जाइटी और डिप्रेशन को भी देखेंगे तो पेशेंट्स के अंदर जो राजयोग का जिन्होंने अभ्यास किया उनके अंदर 69.3% है जिनका ये डिक्रीज है, और जिन्होंने नहीं किया वो उनका 6.6% ओनली डिक्रीज हुआ है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ देखेंगे तो आप जिन्होंने किया है उनकी 90.5% इम्प्रूवमेंट आई है, और जिन्होंने नहीं किया उनका 7.4% ही है। फिर हम उनके यदि फंक्शनल आउटकम्स को देखें तो उनका एक स्कोर होता है स्पाइनल कॉर्ड इंडिपेंडेंस मेजर। आप सब समझते ही होंगे कि ये वो पेशेंट्स हैं कि जो कोई एक्सीडेंट हो गया या गिर गए, कुछ भी ऐसी चीज होने से जिनकी स्पाइन कॉर्ड में इंजरी होती है, तो वो पैराप्लेजिक माना जिनका सिर्फ लोअर पोर्शन काम नहीं करता अपर काम करता है, टेट्राप्लेजिक यानी जिनके दोनों पोर्शंस ही काम नहीं करते, तो इन पेशेंट्स की मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो कैसी होगी। कि जब हम पूरी तरह से इस जीवन में दूसरे पर निर्भर हो जाएं, हम पानी भी अपने आप से ना पी सकें, हम कुछ भी खुद से ना कर सकें, पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हैं, तो ऐसे पेशेंट्स ने इसको किया। और ये 1 महीना खाली उन्होंने राजयोग का अभ्यास किया है मॉर्निंग इवनिंग, तो उनका ये देखा जाता है कि उनकी इस फंक्शनल आउटकम में कितना इम्प्रूवमेंट आया। तो दोनों ग्रुप्स में हम यदि साइंस के हिसाब से देखें, स्टैट्स के हिसाब से, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस जिसको कहते हैं वो नहीं था, लेकिन जो ग्रुप जिन्होंने इसका अभ्यास किया 72.2% इम्प्रूवमेंट है, और जिन्होंने अभ्यास नहीं किया उनमें सिर्फ 16% ही इम्प्रूवमेंट है। फिर उनमें एक न्यूरोपैथी पेन होता है और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन भी रहते हैं, लेकिन उसके अंदर भी भले सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दोनों ग्रुप्स की कंपैरिजन में नहीं था, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस की उनके अंदर जो पेन का रिडक्शन है वो 63% था, और जिन्होंने नहीं किया उनका 13.7% था। तो साथ ही साथ एक उनके अंदर होता है स्पेस्टिसिटी का, मीन्स अकड़न आ जाती है उनके हाथ और पैर में, तो उसको भी हमने देखा, लेकिन उसमें डिफरेंट मसल्स रहती हैं तो उसको हमने बहुत ज्यादा वो नहीं किया क्योंकि वो फैक्टर्स बहुत डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी ये पाया गया कि जिन्होंने राजयोग की प्रैक्टिस की है उनका ग्रेड 4 से 0 तक ज्यादा परसेंटेज है कंपैरेटिवली जिन्होंने इसको नहीं किया। तो ये उनकी स्टडीज हैं, ये उनके आप देखेंगे तो स्टैटिस्टिकली डाटा है। इसके अलावा अभी एक बाबा जिन 7 कोर वैल्यूज की बात करता है कि वो हर एक आत्मा में है, उसको लेकर एक प्रोजेक्ट प्लान किया गया था दिल्ली में, जिसकी रूपरेखा पिछले 1-1.5 वर्षों में बनाई गई थी कि ये जो हमारी 7 कोर वैल्यूज हैं, हमारे लाइफ में जितने भी क्षेत्र हैं, हम उसमें इसको कितना यूज करते हैं और किस क्षेत्र में हम कौन सी वैल्यूज को ज्यादा यूज कर पाते हैं, चाहे वो हम ब्राह्मण्स हैं या जो राज्यों की प्रैक्टिस नहीं करते वो भी, क्योंकि कोर वैल्यूज तो सभी के अंदर हैं। तो अभी इसका एक पायलट स्टडी का डाटा जो कि हमारे बीके भाई बहनों के द्वारा ही इकट्ठा किया गया, ये भाई बहनें खाली दिल्ली के ही नहीं थे लेकिन ओआरसी में डिफरेंट एरियाज की भी भट्टियां होती रहती हैं तो बाहर से भी आए हुए हैं, तो करीब 200 भाई बहनों का ये डाटा है जिसकी पायलट स्टडी अभी हमारे सामने है। इसके एनालिसिस पूरे नहीं है लेकिन सिर्फ इसमें किस परसेंट में किस फील्ड में किसने किसको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा है, अभी हम आपके सामने वही शेयर कर रहे हैं। फर्दर एनालिसिस अभी इसका कंटिन्यूड है। तो इसमें हमने 6 क्षेत्र लिए थे, फैमिली डोमेन, प्रोफेशनल, हेल्थ, फाइनेंशियल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। तो फैमिली डोमेन में फर्स्ट नंबर पे सबने प्योरिटी को सबसे ज्यादा परसेंटेज मिला है। तो ये हम लोग भी मानते हैं कि फैमिली के लिए प्योरिटी सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोफेशनल डोमेन में फर्स्ट नंबर पे लोगों ने सबसे ज्यादा नॉलेज और पावर को रखा है। हेल्थ में हैप्पीनेस एंड पावर को फर्स्ट रैंकिंग दी है। फाइनेंशियल डोमेन में नॉलेज, पीस एंड पावर को दिया है। सोशल डोमेन में पावर को फर्स्ट नंबर पे रखा है। साइकोलॉजिकल डोमेन में नॉलेज एंड पावर को रखा है और अकॉर्डिंगली बाकी वैल्यूज की भी ग्रेडिंग हुई है। जैसे फैमिली में लव को सेकंड नंबर पे दिया है, पीस को फोर्थ नंबर पे लिया है। तो इस तरह से हम लोग एक स्पिरिचुअल स्केल का प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम किन वैल्यूज को अपनी लाइफ में ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन हम आत्माओं को क्या बनना है, सतोगुणी बनना है ना, हमारे अंदर सातों गुण बराबर होने चाहिए ताकि जिस समय जिस गुण की जरूरत हो हम उसे यूज कर सकें। तो फर्दर इस प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य ये भी है कि हम अपने आप को भी एनालिसिस कर सके कि मैं यदि हर क्षेत्र में मान लीजिए प्योरिटी को ही रख रहा हूं लेकिन हो सकता है कहीं मुझे नॉलेज को प्रायोरिटी देने की जरूरत है लेकिन मैं सिर्फ प्योरिटी ही फॉलो कर रहा हूं तो क्या होगा, हमारा रेट ऑफ सक्सेस थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। जैसे जहां जिस शक्ति की जरूरत है हमें यूज करनी है, तो इसी तरीके से फिर हम अपनी इसको देखकर हम अपनी इन वैल्यूज को भी एनहेंस कर सकें और इसको सतोगुणता की तरफ में सबको कंप्लीट मात्रा में ले जा सके, उसके ऊपर भी फर्दर हम इसको ले जाना चाहते हैं, इसीलिए इसका आगे एनालिसिस हम करेंगे। तो ये इसके एनालिटिकल रिजल्ट्स हैं, हर एक में अलग अलग बताया गया है। आगे जितना भी कॉग्निटिव पर वर्क हुआ है वो मैं अभी सुशील भाई को हैंड ओवर करती हूँ, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे।
ओम शांति। एकता बहन ने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, बट मैं कोशिश करूंगा टाइम को भी मेंटेन करूं, बट मैं थोड़े से उसमें एक दो इनपुट्स और देना चाहूंगा। जैसे कि हम जब स्पिरिचुअल स्केल की बात कर रहे थे तो हमने स्पिरिचुअल स्केल ब्रह्मा कुमारीज के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी DRDO की है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, तो उनके साथ मिलकर, क्योंकि हमारे सभी भाई बहनों में स्पिरिचुअलिटी की तो बहुत बाबा ने कूट कूट कर भरा हुआ है, बट साथ में अगर हम सब्जेक्ट नॉलेज जिनको साथ लेके चलें तो उसके साथ में हमारा वो स्टैंडर्डाइजेशन और टूल का अच्छा एफिकेसी और एक्यूरेसी, ये सब दोनों चीजें बहुत अच्छी आ जाती हैं। तो ये डीआईपीआर के साथ मिलकर कर रहे हैं और ये अभी केवल पायलट स्टडी है। सो पायलट स्टडी में अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 200 नंबर का डाटा है जो अभी आप लोगों ने देखा, बट हम लोगों का जो विचार है और जो स्पार्कविंग के आप सभी लोगों की हेल्प की सहायता से, इवन इंटरनेशनल सहायता से, प्लान ये है कि बाबा के सभी जितने भी हमारे बच्चे हैं 7-8 लाख पूरे उसमें इस पर किया जाए। और उसका उद्देश्य भी डबल फोल्ड है। डबल फोल्ड ये, जैसा बहन ने लास्ट में कंक्लूड किया कि हमारे सातों गुणों को हमने जब बाबा ने सिखाया है, जो हमारी आत्मा के इनेट क्वालिटीज हैं, तो उनको जिस भी परिस्थितियों में, यहां पर केवल हमने 6 परिस्थितियां कि हमारे प्रोफेशन में अगर आती हैं तो किस टाइप की हैं, पर्सनल में आती हैं तो किस टाइप की हैं, हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं तो हम किन गुणों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे रिलेटेड कोरिलेट करके निकाला है। बट इसका टोटल जो प्लान है वो इवन उस लेवल तक है कि हम में से कितने लोग किन गुणों की अधिकता को यूज करते हैं, किन की हमारे अंदर कमी है जिससे हम उसकी भरपूरता करें, किस सेंटर और किस जगह पर पालना बहुत प्यारी है तो प्यार का ही, लव को ही हर तरह के चैलेंजेस में यूज किया हुआ है। तो ये पूरा होलिस्टिक कंसेप्ट निकल के आए। और मैं इसमें केवल एक लाइन लास्ट में बोलना चाहूंगा कि जो साइकोलॉजिस्ट उस इंस्टीट्यूट की, शी इज सेकेंड इन कमांड, उनका कहना है कि ये शायद वर्ल्ड में पहला इतना प्यारा स्पिरिचुअल स्केल होगा और जिसको पेटेंट भी करने का ब्रह्मा कुमारीज और डीआईपीआर के साथ मिलकर को पेटेंट का प्लान बनेगा। जहां तक स्पाइनल इंजरी का है, मैं उसमें एक बात केवल ऐड करना चाहूंगा क्योंकि एक तो बहन खुद वर्षों से वहां पर सेवा करती चली आ रही हैं, तो उन्होंने ये नहीं बताया, इसका पूरा क्रेडिट ना केवल नो डाउट बाबा ने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, वो तो उचित है ही है, एकता बहन को सरोज बहन दीदी की गाइडेंस है, उनके साथ में पूरी सेवाएं, और शी इज नॉट ए रिसर्चर बट ए स्पिरिचुअल रिसर्चर, एंड इट्स शी इज नॉट प्रूविंग टू बी ए रिसर्चर ओनली रिलेटेड टू स्पाइनल इंजरी। कुछ हफ्तों पहले उन्होंने ये स्पिरिचुअल स्केल का असाइनमेंट अपने हाथ में लिया और बहुत अच्छे से उसको एक शेप दे रही हैं। तो यहां पर न केवल एकता बहन का प्रेस करने का उद्देश्य था, बाबा का हर बच्चा इस लायक है जो कि हर एक फील्ड में हम लोग ऑलरेडी अपने ज्ञान योग धारणा सेवा चारों चैप्टर्स को कर रहे हैं। तो अगर हम उसी को रिफ्लेक्ट करने के लिए, जैसा एकता बहन ने शुरू में बोला कि अगर उसी का डॉक्यूमेंटेशन करके साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ मिलकर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के कॉपरेशन के साथ मिलकर अगर ब्रह्मा कुमारी ये सेवाएं करती हैं, तो उसको हम कितना और ज्यादा बाबा की प्रत्यक्षता के लिए भी यूज कर सकते हैं और साथ के साथ ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, यहां पर मैं पहले 2 मिनट में ब्रीफ करना चाहूंगा कि हमारी जो जर्नी ये स्पार्क की है, टू फोल्ड है। पहला फोल्ड जो सभी आप लोग को भी 4 टॉपिक्स मिल चुके होंगे और हम सभी लोग पूरे वर्ष उन पे कार्य भी करेंगे और उसके प्रोजेक्ट्स पे भी कार्य करेंगे, बट सेकेंड फोल्ड इज कि हम लोग और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर और बहुत सारे सेक्टर्स के साथ मिलकर उनकी सेवाएं उनको रिसर्च्ड वे में आउटकम दिखाकर भी कर पाए। तो हमारी जो जर्नी है वो साइंटिफिक वे में डीआरडीओ के साथ शुरू हुई थी और इसमें, मतलब वक्त अगर परमिट करता है तो इसमें हम लोग इंटरनेशनल चैप्टर्स को करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग ट्रैवल करेंगे, श्रीकांत भाई और मैं स्वयं स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड एंड फ्रांस, वहां पर भी हम लोग सेवाओं के लिए जा रहे हैं, तो उसको भी शेयर करना उचित होगा। नो कमिंग टू डीआरडीओ, मैंने पहले भी बहुत शेयर किया है बट दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि ये एफर्ट कंटिन्यूड है। स्टार्ट हुआ था 120 भाई बहनों से कि उनके लोगों पर ट्रेवल किया, सॉरी दिस इज रिलेटेड टू निमेंस, सो फर्स्टली लेट मी शेयर विद निमेंस। सो डीआरडीओ सॉरी, सो डीआरडीओ का इस जर्नी में तीन लैब का मिलकर साथ कार्य हुआ था और डिपास जो हमारी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज है वो नोडल एजेंसी थी, उनके साथ दो और जो लैब थी वो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज और तीसरी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, उनके साथ मिलकर 120 भाई बहनों पर जो कि 40 40 40 में डिवाइड किया था, जो बाबा के बच्चे एक साल से छोटे हैं, एक साल से पांच साल वाले हैं, ज्ञान में ज्ञान की उम्र, और जिनका पांच साल से आगे का है, और उनके अंदर सभी चाहे हम साइकोलॉजिकल लेवल पर, फिजियोलॉजिकल लेवल पर या कॉग्निटिव और अफेक्टिव लेवल पर, इन सभी चीजों में रिजल्ट बहुत अच्छे पाए गए। एक एक लाइन में तीनों को शेयर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर साइकोलॉजिकल लेवल पर तो होप और हैप्पीनेस स्केल में बहुत इंप्रूवमेंट पाया गया। अगर हम फिजियोलॉजिकल लेवल पे बोलें तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई, मतलब हम लोगों का ये बोला जाता है कि अगर हमारे ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस आते हैं तो हमारा हार्ट रेट वेरी करने लगता है, और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इसका मतलब हम अचल अडोल वाली स्थिति में चल रहे हैं। और तीसरा कॉग्निटिव और अफेक्टिव का मतलब, जैसे कॉग्निशन में हमारी डिसीजन लेने की क्षमता, हमारी प्लानिंग करने की क्षमताएं, तो हमारी जो ये बौद्धिक क्षमताएं हैं उनमें भी कॉग्निटिव स्किल्स पर ये फाइंड आउट किया गया कि उनमें भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट था। नाउ कमिंग टू निमेंस, जैसे मैंने कहा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर, तो एक बेंगलोर में इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस, तो उसमें प्रोफेसर बिंदुकुट्टी के साथ मिलकर जो हमारे एक अजय भाई थे उन्होंने अपना पीएचडी भी कंप्लीट किया था उसी फील्ड में रहकर, और उन्होंने उनकी जो बिंदुकुट्टी जी की लैब है स्लीप रिसर्च लैब मेनली है उस पर भी बहुत अच्छा कार्य हुआ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ ईजी एंड साइकोलॉजिकल स्केल बेस्ड ऑन दैट ही हैड गिवन दैट। और उसमें भी जैसा आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि जो ब्रेन का डाटा है अगर हम मेडिटेटर्स हैं तो हमारा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड 8 से 13 हर्ट्ज का उसमें इंप्रूवमेंट आता है, बट जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स होते हैं, जो डीप मेडिटेटर्स होते हैं, उनके केस में इवन थीटा स्टेट में जो 4-8 हर्ट्ज है उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट है पाया जाता है। तो वो सब स्टडी हुआ, और ये दूसरे एक रजनीकांत भाई ने, इंस्टीट्यूट वही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, बट इन्होंने ईजी और एफएमआरआई साथ में मेडिटेटर्स का स्टडी किया और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए, बहुत हाई इंपैक्ट फैक्टर के जर्नल में ये पब्लिश हुआ वर्क। और मैं आज का केवल उनके बारे में बताना चाहूंगा कि वो प्रेजेंटली इस समय बेल्जियम में जो वर्ल्ड की एक वन ऑफ द बेस्ट लैब मानी जाती है कोमा एंड कॉन्शियसनेस पर कार्य कर रहे हैं। तो उसके बाद में मैं शेयर करना चाहूंगा अगेन निमेंस का जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, मैं अगर क्रूड लैंग्वेज में हम बोलें कि जब हमारा ब्रेन कुछ नहीं करता है तब क्या करता है, और उस समय भी हमारी ब्रेन की स्टेट को अगर हम निकालें तो योगिक ब्रेन जो योगी आत्माएं हैं उनके ब्रेन के स्टेट में और ब्रेन नेटवर्क्स में किस टाइप के डिफरेंसेस हैं वो कार्य कॉग्निटिव प्रोसेसेस को लेकर भी किया गया। अब जैसे मैं तीन पॉइंट इसके थोड़ा थोड़ा एलोबरेट करता हूं, जैसे इंक्रीज्ड ब्रेन स्टेबिलिटी, तो इंक्रीज्ड ब्रेन स्टेबिलिटी का मतलब जो हमारी परिस्थितियां आ रही हैं उसके चेंजेस आने के बावजूद भी ब्रेन के स्टेट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, या अगर हम बोलें डिक्रीज्ड डीएमएन एक्टिविटी इज इंडिकेटेड फॉर ए बेटर कॉग्निटिव प्रोसेस, दैट मींस जो योगी आत्माएं होती है वो एक कार्य को करने में जो ब्रेन के जितने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करती है वो एक नॉर्मल आत्मा की तुलना में कम रिसोर्सेस इस्तेमाल करती है, और अगर कम रिसोर्सेस इस्तेमाल करती है तो बहुत सारे रिसोर्सेस जो अचानक स्थिति परिस्थिति आए उसके लिए अवेलेबल रह जाते हैं, तो इसलिए भी उनको स्ट्रेस जनरेट उतना नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से इनके ये इंटरप्रिटेशन निकाले गए। देन जो स्टडी कंटिन्यूड हुई, जैसा मैं आपसे शेयर कर रहा था, डीआरडीओ में शुरुआत वहां से हुई, बट वो स्टडी कंक्लूड अब जाकर हुई है, जिसमें हम लोगों ने लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स पर बहुत लंबा कार्य किया, और उसमें भी जितना भी मैंने अभी तक बताया हम लोगों ने ईसीजी, ईईजी, आई ट्रैकिंग, एफएमआरआई और डीटीआई, तो ब्रेन पैटर्न पर, आई ट्रैकिंग के पैटर्न पर, हार्ट रेट पर, और एफएमआरआई मतलब फंक्शनल एमआरआई पर, और डीटीआई मतलब डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग। तो फंक्शनल एमआरआई में हम जितनी बात करते हैं, जो मैंने अभी कॉग्निटिव प्रोसेस और ये सब बोला, तो हमारे फंक्शनल आउटकम में किस टाइप के डिफरेंसेस हैं, लेकिन जब हम डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग की बात करते हैं तो कहने का मतलब जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स हैं उनके न्यूरोनल स्ट्रक्चरल लेवल पर भी चेंजेस आ गए, और उन स्ट्रक्चरल चेंजेस आने की वजह से, मतलब हम जो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में फॉर्मुलेट हो गया, मतलब केवल बिहेवियरल पैटर्न पे ना होके न्यूरोनल लेवल पे जब वो चेंजेस आ जाते हैं तो वो मेरी स्थिति ही वही हो जाती है, तो उस लेवल पर चेंजेस वहां पर पाए गए। तो ये मैंने जैसे डीआरडीओ का शेयर किया, बट जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि ये हमारी जितनी भी राजयोगा मेडिटेशन का प्रैक्टिसेस है उसको हम जब भी स्विंग के द्वारा सभी जगह सेवाएं कर रहे हैं तो सभी जगह इसकी इफेक्टिविटी है, तभी बाबा उनकी सेवाएं करवा भी रहा है, तो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए भी किस तरीके से यूजफुल है इसके भी कुछ कुछ स्टडीज किए गए। जैसे हमारा ओआरसी में एक कैंप लगता है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, तो हमारे पूरे देश से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में शायद 8 ग्रुप आते हैं, तो वो एक एक वीक के लिए वहां पर आते हैं और फिर उनका पूरा एक वीक का स्टेट ऑफ पूरा कमेंट्री से लेके पूरा ज्ञान से लेके सारा कुछ उनके साथ में कोर्स कराया जाता है। तो उनका प्री और पोस्ट के जब वो पहले आए थे तब उनके क्या क्या बिहेवियरल पैटर्न थे और उनके अंदर क्या क्या नेचर थी, और उसके बाद में जब वो 7 दिन के बाद में वो पूरा कोर्स खत्म करने के बाद में गए तब उनके अंदर क्या क्या चेंजेस पाए गए, तो उसको भी साइकोलॉजिकल स्केल्स होते हैं जिसमें बिहेवियरल पैटर्न्स का स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न होते हैं। जैसे हमने WHO से लिया था एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो हमने प्रॉपर परमिशन लेके WHO के साथ में, और तब डॉक्टर शिखा थागी हैं, शी वॉज द मेन कोऑर्डिनेटर फॉर दैट एंड कंडक्टेड दैट, उसमें एज ग्रुप भी आप देख रहे हैं 16 से 29 साल के उनके साथ में था, और इसको ये कार्य किया गया। नाउ बिफोर के हम लोग MOU पर जाएं, MOU का जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं तो ये तो ज्यूरिख का है, जिसका वहां पर जब हम लोग का, आप लोगों में से कुछ लोग ज्ञान सरोवर में अपना भी डाटा दिए होंगे, आपका भी हो सकता है ब्रेन का डाटा रिकॉर्ड हुआ हो, तो ये मेडिटेटर्स हम लोगों का, चूंकि हमारे पास ज्ञान सरोवर लैब में इस समय ईजी का बेस्ट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड मौजूद है, तो उसकी सहायता से आप सभी लोगों की क्या स्थिति है तो उसका भी डाटा रिकॉर्ड करके उसका एनालिसिस का काम ना केवल हमने स्वयं किया, जब मेरा एक स्टूडेंट था कनिष्क, डॉक्टर कनिष्क, जो अब पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा है आईआईएससी बेंगलोर से। तो उस कार्य को जब उन्होंने यहां पर डाटा कलेक्ट किया तो यहां तो एनालिसिस करके रिजल्ट पब्लिश किया ही, बट उस रिजल्ट को पब्लिश करके जब वो शेयर करने के लिए यूएसए गए तो वहां पर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट आए हुए थे, उन्होंने उसमें इंटरेस्ट शो किया और वो ज्यूरिक के साथ में भी एमओयू हुआ। आप ही सभी लोगों का कुछ का डाटा उनको ब्रेन का दिया गया और उन्होंने एनालिसिस निकाला और अभी जो लेटेस्ट उन्होंने बताया है उसके मुताबिक वो ब्रेन नेटवर्क्स पाए गए जो उन्होंने पहले किसी और डाटा में नहीं देखा है अर्लियर, जैसा उन्होंने बोला। और उसी के नाते आगे बढ़ाने के कि ये की इंस्टीट्यूट है जिसके साथ में हमारा एमओयू हुआ था, बट अब जो हम जा रहे हैं वो एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, दैट यूनिवर्सिटी इज नोन एज यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक। तो हम यूनिवर्सिटी के ज्यूरिक उनके प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, उनके साथ मिलकर वी आर टारगेटिंग कि अब हमारा एमओयू यूनिवर्सिटी के साथ ही हो जाए। तो इस तमन्ना के साथ और आप सभी लोगों की अच्छी विशेष के साथ बाबा के इस कार्य के लिए हम लोग ज्यूरिक पर भी जा रहे हैं। मैं इसके रिजल्ट को थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं बिकॉज मैं कुछ और भी शेयर करना चाहूंगा, तो इसलिए देन हमारा जब मैंने शेयर किया कि वो अब स्टूडेंट आईएससी बेंगलोर में पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा है, तो जिन प्रोफेसर्स के साथ इस समय वो कार्य कर रहे हैं वो खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चेयर हैं आईआईएससी बेंगलोर में, जो कि हमारा बेस्ट इंस्टीट्यूट कंट्री का माना जाता है, और उनके साथ भी एमओयू हो गया है और आईआईएससी बेंगलोर के साथ मिलकर इस तरीके की संभावनाएं की गई हैं कि ना केवल ब्रह्मा कुमारीज एवं आईआईएससी बेंगलोर मिलकर राजयोग मेडिटेशन पर रिसर्च करें, बल्कि अगर हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर राजयोग मेडिटेशन पर रिसर्च करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक अगर एग्री करती है तो इंडिया से ब्रह्मा कुमारीज और आईआईएससी बेंगलोर, स्विट्जरलैंड से यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक और बाबा के बच्चे स्विट्जरलैंड में, तो इस तरीके से भी नोडल एजेंसीज को करने के लिए उन्होंने एग्री किया है। और दूसरा एमओयू जो अभी पिछले महीने मतलब पिछले साल और पिछले महीने दिसंबर में ही पुणे में डॉक्टर भटकर के साथ मल्टीवर्सिटी में हुआ और वो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट के SNT साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेन की थिंकर हैं, तो अभी उनके साथ भी नॉट ओनली एमओयू के कंट्री के 50 अप्रॉक्सीमेटली प्रोमिनेंट रिसर्चर्स इन डिफरेंट फील्ड्स, 50 प्रोमिनेंट रिसर्चर चाहे वो DRDO से हों, इसरो से हों, CSIR से हों, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटीज IITs या IISER से हों, तो इस तरीके से 50 प्रोमिनेंट रिसर्चर्स फरवरी में यहां पर आने का माउंट आबू में प्लान है और उनके साथ मिलकर नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल पर मल्टीवर्सिटी के साथ ब्रह्मा कुमारीज किस तरीके से राजयोग मेडिटेशन के इफेक्ट्स एंड इंपैक्ट्स ऑन सोसाइटी के ऊपर रिसर्च करे, तो उसके लिए प्लान है। नाउ जैसे मैंने कहा कि ना केवल हम स्वयं जो हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं बल्कि डिफरेंट सेक्टर्स के साथ मिलकर किस तरीके से कार्य कर सकते हैं, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट विंग पर बात हुआ था बोरीवली मुंबई और दीदी वहीं पर हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो ट्रांसपोर्ट विंग में भी अगेन दो सेक्टर हैं, एक तो रोड एंड रेल और एक है शिप एंड एयर। तो रोड एंड रेल में बात हुआ था और उसमें भी पर्टिकुलरली रेल के ऊपर बात हुआ था, तो जो हमारे लोको पायलट्स होते हैं वो किस टाइप की परिस्थितियों में भी वो व्हीकल को चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो एक व्यक्ति के ऊपर कितने सारे पैसेंजर्स की या कितनी सारी और जिम्मेदारियां हैं, तो अगर उनके स्टेट ऑफ माइंड में उनके लिए कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल विच विल बी बेस्ड ऑन राजयोग मेडिटेशन, वो किस तरीके से हम बनाएं जो उनके अपने प्रोफेशन में, जैसे बाबा कहता है ना कि आपका रिफ्लेक्शन किससे आना चाहिए, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कार्य कुशलता के द्वारा वो नजर आना चाहिए, तो वो उस तरीके से डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के साथ में लेकर हम किस तरीके से चल सकते हैं, तो उसका ये एक एग्जाम्पल है। तो यूथ के साथ एग्जाम्पल दिया, साइकोलॉजी के साथ एग्जाम्पल हुआ, हेल्थ से रिलेटेड हुआ, और कॉर्पोरेट्स, रेलवे इज ए कॉर्पोरेट, वी कैन से दैट, सो कॉर्पोरेट के साथ हम लोग के चल सकते हैं। तो यहां एक होलिस्टिक फिगर बनाई है कि कहने का मतलब अगर हम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्टर्स, जैसे बहन ने दोनों शेयर किए, तो एक शेयर किया स्पाइनल इंजरी, मींस हम लोग हैंडीकैप उस पोजीशन में आ जाते हैं उस पर, और एक और कार्य जो इस समय प्रेजेंटली ऑन है जिसको मैं अभी आगे शेयर करूंगा, वो डिफरेंटली एबल्ड के लिए। तो हम हैंडीकैप के लिए, नॉर्मल्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए किस तरीके से राजयोग मेडिटेशन को लेकर, किस तरीके से इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशंस के कोलैबोरेशंस के साथ जो हम सेवाएं कर रहे हैं उन्हीं सेवाओं में एफेक्टिविटी प्लस पब्लिकेशंस को लाकर हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, तो उसका एक ये रूप यहां दिया गया है। और मैं लास्ट में कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोट किए हैं वो साथ में शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैंने शेयर किया डॉक्टर भटकर के बारे में, तो हमारी सेवाएं ऑलरेडी बेंगलोर ग्रुप के द्वारा किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी पर कई वर्षों से बहुत अच्छी सेवाएं चलती रही हैं, और कैंसर पेशेंट और उनके केयर गिवर्स उनमें बहुत बड़े बेनिफिट पाए गए हैं। तो जब डॉक्टर भटकर से हमने ये शेयर किया तो वो अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो यूएस का है उनके साथ मीटिंग हुआ था कैंसर के ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और यूएस गवर्नमेंट के साथ में, तो वो चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने तुरंत इंटरेस्ट जाहिर किया कि जब ब्रह्मा कुमारी इसके इस राजयोग मेडिटेशन से कैंसर पेशेंट पर भी इस टाइप के इफेक्ट हैं तो हम एनआईएच को और उनके साथ मिलकर किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो हम वो प्लान करें। नो डाउट एकता बहन ने ऑलरेडी एम्स दिल्ली पर, प्रोफेसर जुल्का उस समय डायरेक्टर थे कैंसर इंस्टीट्यूट के वहां पर, तो उनके साथ में जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हैं उनके ऊपर राजयोग मेडिटेशन पे कैसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट के ऊपर वो एक प्रोजेक्ट का ऑलरेडी फॉर्मुलेशन किया था। दूसरा, जैसे एक स्पोर्ट्स सेक्टर में बात हुआ था, तो अभी मुलाकात मेरा अभी बाकी है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं आपको पता ही होगा राठौर, जो कि डिफेंस, एक्स डिफेंस पर्सनल हैं, तो उनके साथ में शेयर हुआ था, तो हमने शेयर किया था जैसे बहनें आप लोगों को कमेंट्री कराती हैं हर समय, तो आप लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत आसान होता है, बट होता कैसे है, जैसे ही बहन कमेंट्री कराती है तो आप वो विजुअलाइज करते हैं, और जब हम वो विजुअलाइज करते हैं तो ब्रेन के वो पोर्शन एक्टिव हो जाते हैं जो उस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये विजुअलाइजेशन का साइंटिफिक वे में ऑलरेडी सक्सेस है कि स्पोर्ट्स पर्सन, कोई अगर स्विमर है जो जंप करने जा रहा है, उससे पहले अगर पूरा पूरा सीन विजुअलाइज कर ले तो उसको विजुलाइज करने के बाद जो उसकी सक्सेस रेट आएगा दैट विल बी ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड। तो अब मैंने दोनों को यहां पे कोरिलेट करके वहां जब उनसे शेयर किया कि हमारे यहां ब्रेन, मतलब ये विजुलाइजेशन इज ए कॉमन पैटर्न फॉर एवरी बाबाज चाइल्ड, हर बाबा का बच्चा उसको हर समय प्रैक्टिस करता है, तो ये उसके अफेक्ट उसमें है। दूसरा, जब उनसे शेयर हुआ तो हम मेडिटेशन का साइंटिफिक लैंग्वेज में एक शब्द और इस्तेमाल होता है, ऑटो सजेशन, टेक्निकल लैंग्वेज में एक वर्ड यूज होता है न्यूरो फीडबैक। तो मैं न्यूरो फीडबैक और ऑटो सजेशन को एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे ही व्यक्ति अगर स्ट्रेस में है और उसको सामने से दिख जाए कि उसका अल्फा अब कम हो रहा है, तो वो उसके ब्रेन गॉड ने खुद ने गिफ्ट दिया हुआ है कि वो जैसे ही देखेगा उसका अल्फा नीचे जा रहा है तो वो अपने को स्टेबलाइज करता है, जैसे ही वो स्टेबलाइज करता है तो वो अल्फा ऊपर आता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो फीडबैक ट्रेनिंग, मतलब न्यूरो पैटर्न्स पे पता लग रहा है कि मेरा अल्फा कम जा रहा है और उससे इंप्रूव हो गया। जबकि ऑटो सजेशन में बाबा के इस मेडिटेशन के समान के द्वारा हम लोग बाबा के सभी बच्चे समान प्रैक्टिस करते हैं, तो समान में हम कब उसकी रेजिलियंस बढ़ा चुके कि हमारा वो उन परिस्थितियों में अल्फा नीचे जाए ही नहीं, थीटा ऊपर जाने लगे, मतलब हम उस स्टेट ऑफ माइंड में रहे, तो हम लोग वो ऑटो सजेशन से ऑलरेडी यूज करते हैं। तो वो स्पोर्ट्स सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर्स में, रिहैबिलिटेशन सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर, शायद मैंने मिस कर दिया, आधा मिनट उसको और मैं शेयर करता हूं। एजुकेशन सेक्टर में जैसे हमारे जो डाटा कहता है एडीएचडी एडीडी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा 10-12% हर क्लास में ये बच्चे उस प्रॉब्लम से सफर करते हैं। और हम लोगों में से ज्ञान ना होने के नाते पेरेंट्स या टीचर्स कहते हैं वो पढ़ता नहीं, ध्यान नहीं देता, जबकि वो उसके डिसऑर्डर को नहीं समझ पा रहे हैं। बट हम यहां क्यों शेयर कर रहे हैं, उसमें भी पाया गया है कि मेडिटेशन और म्यूजिक की सहायता से 38% ऑफ देम कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रिएटिव एंड इनोवेटिव चिल्ड्रन। मैं रिपीट करूंगा, अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने गौर किया होगा, अब हम उनको डिसेबल्ड नहीं बोलते हैं, अब हम उनको हैंडीकैप नहीं बोलते हैं, शब्द का जिसका इस्तेमाल होता है वो है डिफरेंटली एबल्ड। तो डिफरेंटली एबल्ड हैं वो एक्चुअल में। अभी भी मेरी एक भाई से बात हो रही थी, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर कहता है दे आर एक्चुअली डिफरेंटली एबल्ड, दे आर नॉट हैंडीकैप, वी सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल आर हैंडीकैप टू अंडरस्टैंड देयर डिफरेंट एबिलिटीज। मैं इसको कहना चाहूंगा कि वो जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैं वो एबनॉर्मल नहीं हैं। ये बताया गया है उस पेपर के द्वारा कि वो डिफरेंटली ब्लेस्ड हैं और हम उनकी वो डिफरेंट कैपेबिलिटीज को ना समझने के कारण एबनॉर्मल मानकर छोड़ देते हैं। जबकि उनका स्ट्रेस लेवल किस लिए बढ़ता है कि ये छोटी सी बात जो मुझे समझ आ रही है इनको क्यों नहीं समझ आ रही है। सो विद द हेल्प ऑफ मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस अमंग देम वी कैन हैव लॉट्स ऑफ इंप्रूवमेंट। अगेन मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा फिर से एकता बहन पर, दिल्ली में डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल जिसकी अब तो शाखाएं शायद पूरे कंट्री में बहुत जगहों पर हैं, तो जो उसकी प्रोमिनेंट पहले प्रिंसिपल हुआ करती थी डॉक्टर शोभा चोना, उनकी खुद की डॉटर तमन्ना शी इज डिफरेंटली एबल्ड, तो उन्होंने 3 स्कूल्स हैं वो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के हैं, उनके साथ मेडिटेशन राजशिखा मेडिटेशन में उन बच्चों के ऊपर किस तरीके से इंप्रूवमेंट उनकी लर्निंग में, उनके सोच में, उनके अपने एडीएल एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ में किस टाइप के चेंजेस लाए जा सकते हैं उस प्रकार कर रही हैं। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू सुशील भाई और एकता बहन, बहुत बहुत अच्छे से आपने बहुत डीप स्टडी और जो इम्प्लीमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट किया है वो आप बता रहे हैं। बता रहे थे और बहुत अच्छी चीजें आपने उसमें देखी होंगी कि किस तरह से हम स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने लाइफ में कर सकते हैं।